ओम शांति। अनुपम प्रतिभा के धनी बाबा के हर महावाक्य को चिकित्सा विज्ञान के अनुरूप विश्लेषित करके प्रायोगिक एवं तार्किक रूप से सिद्ध करना सतयुग की स्थापना हेतु डबल डॉक्टर का रोल अदा करने वाले प्रभु प्रिय बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में संलग्न आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का सहृदय स्वागत है, अभिनंदन है। भ्राता जी का परिचय स्वयं ही दैदीप्यमान है। आपने सन 1959 में इस धरा पर प्रथम स्पर्श किया। बाल्यकाल से ही मेघावी प्रतिभा का परिचय देकर 1980 में दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS और 1989 में लेडी हार्डिंग दिल्ली से MD किया। सन 1986 में आपको परमात्मा परिचय मिला और सन 1995 में आपको प्राणप्रिय बाबा ने डबल डॉक्टर के रूप में अपने पास बुलाया और आप तब से बाबा के नक्शे कदम पर चलकर नाम वाला कर रहे हैं। वर्तमान में आप ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है तो राजयोग एक्सरसाइज एवं डाइट के समन्वय से आर्टरीज खुल जाती हैं। ऐसा प्रमाण DRDO के साथ मिलकर सफल कराने के निमित्त आप ही हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही संयमित, संतुलित और उदाहरण मूर्त है। आज हम आपके मुखारविंद से लाभान्वित होंगे। विषय है निश्चय, नशा और निशाना। आदरणीय डॉक्टर साहब।
ओम शांति। जब से हमें ये दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला तब से एक महावाक्य बाबा का हम सुनते आए, लगभग हर रोज ही मुरली में रिवाइज हो जाता है। वो क्या है? निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती। जहां निश्चय है वहां विजय है। तो निश्चय किस बात का और नशा किस बात का और निशाना कौन सा? पहले निश्चय के बारे थोड़ा समझते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय, इंग्लिश में फेथ भी कहते हैं। जब हमें निश्चय होता है वो निश्चय खाली, बाबा कहते हैं चार प्रकार का निश्चय चाहिए। वो चार प्रकार का निश्चय कौन सा है? पहला है बाप में निश्चय, दूसरा है स्वयं में निश्चय, तीसरा है ड्रामा में निश्चय और चौथा है परिवार में निश्चय। जैसे एक टेबल के या चेयर के चार पिलर होते हैं, ऐसे ही निश्चय के चार आधार हैं, चार फाउंडेशन है, या यूं कहें ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही निश्चय है। ये ज्ञानी और योगी जीवन का आधार ही निश्चय है। अगर निश्चय चारों में निश्चय है तो हम एकरस रहते हैं, हमारी स्थिति आगे बढ़ती रहती है। निश्चय का आधार है नॉलेज, नॉलेजफुल। जितना अधिक ज्ञान का हम बाबा की जो मुरली है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते हैं, महीनता से करते हैं, उतना अधिक हमारा निश्चय बढ़ता जाता है। और नशे का आधार है पावरफुल। जितनी सर्वशक्तियों को अपने अंदर समाते जाते हैं, स्पेशली अशक्तियां, जितनी अशक्तियां हमारे अंदर धारण होती जाती हैं उतना हमारा नशा बढ़ता जाता है। नशे भी चार हैं, निश्चय भी चार हैं, नशा भी चार है। पहले अपने आत्मिक स्वरूप का नशा, शुरू शुरू में क्या नशा चढ़ता है कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये नशा चढ़ता है। दूसरा है अलौकिक स्वरूप का नशा, अपने ब्राह्मण जीवन का नशा कि मुझे बाबा ने कहां से चुना है, कोटो में कोई आत्मा हूं, कोई में भी कोई आत्मा हूं। और तीसरा नशा है फरिश्ते जीवन का नशा। जैसे जैसे हमारी स्थिति बढ़ती जाती है, शक्तियां आती जाती हैं, अशक्ति संपन्न बनते जाते हैं, उतना उतना हमारा फरिश्ता जीवन प्रत्यक्ष होता जाता है। और चौथा है भविष्य स्वरूप का नशा। और जितना जितना हम फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष होता जाता है उसका नशा चढ़ता जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का नशा था और बाबा को भविष्य का नशा क्या था, मैं विष्णु बनने वाला हूं, मैं भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूं, तो भविष्य स्वरूप का नशा। तो चार प्रकार के नशे। और निशाना भी हमारे, वैसे तो निशाने दो तो मुख्य हैं ही, एक निशाना है कि ब्रह्मा बाप समान हम फरिश्ता बन जाएं, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बन जाएं। जो ब्रह्मा बाबा का लास्ट के महावाक्य थे, आखिरी दिन 18 जनवरी 1969 को, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इस शरीर में रहते हुए हमारी इस स्थिति बन जाए, हम इस साकार शरीर में रहते हुए निराकारी बने, निर्विकारी अर्थात हमारे किसी विकार का अंश भी ना रहे, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना अहंकार ना इसके किसी भी अंश या वंश का भी, एकदम संपूर्ण निर्विकारी बन जाए और निरहंकारी बन जाए। और एक निशाना है हमारा भविष्य, जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं लक्ष्य और लक्ष्य दाता, लक्ष्य को याद करो। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है देवता, मनुष्य से देवता बनना, विष्णु के समान या यूं कहें लक्ष्मी श्री नारायण के समान सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये हमारे दो निशाने हैं, अर्थात मंजिल है। तो निश्चय हमारा, अब निश्चय के बारे में गहराई समझते हैं। जितना जितना निश्चय हमारा मजबूत होता जाता है उतना उतना हमारा निशाना एक्यूरेट होता जाता है। एक्यूरेट अर्थात हमारा निशाना एकदम एक्यूरेट, जो अपने लक्ष्य पर, जो आत्मिक स्वरूप का नशा, अपने ब्राह्मण स्वरूप का नशा, अलौकिक जीवन का नशा, परिस्थिति स्वरूप का नशा और भविष्य स्वरूप का नशा, वो चेहरे और चलन से दिखाई देगा। और फिर निशाना एक्यूरेट हमारी, यहां रहते भी हमारी बुद्धि रूपी आंख अपने लक्ष्य पर रहती है, बुद्धि रूपी आंख हमारी अपने वर्तमान में बाबा से जुड़ी रहती है, निश्चय बुद्धि होकर हम बाबा से कंबाइंड रहते हैं, और हमारा जो मन रूपी आंख हमारी हमेशा अपने लक्ष्य अर्थात अपने सत्युग में, सुख धाम में, अपने भविष्य स्वरूप पर रहती है। और बीच में ट्रांजिशन जो है वो है फरिश्ता स्वरूप। तो चलिए हम चलते हैं निश्चय के ऊपर, थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए बाबा जैसे, यहां मैं पहले एक बात आपको, एक ब्राह्मण बच्चों के डिफरेंट प्रकार कैसे कैसे हैं इसके बाद हम थोड़ा निश्चय को समझते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखिए हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलता है, हम सब बाबा की मुरली सुनना शुरू करते हैं, बाबा के महावाक्यों को आत्मसात करना शुरू करते हैं, अपने अंदर बाबा की मुरली को और मुरली को सुन करके हम मुरली सुनाने भी लगते हैं। जैसे आज की मुरली में था मुरलीधर बाप के बच्चे मुरली सुनाना, मुरली सुनाए, तो ये हमें सुनना सुनाना तो हम शुरू कर देते हैं। और ये तो हम आधा क्लब से करते आए हैं, द्वापर उसे हमने सुनाया, कथा सुनी और सुनाई, वो तो आधा क्लब से करते, इसमें सभी ब्राह्मण पारंगत हो जाते हैं। अब बाबा के बच्चे जो है, बाबा ने चार प्रकार के बच्चे बताए, एक है स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, एक है स्पिरिचुअली सेंसिबल, तीसरे है स्पिरिचुअली सेंसफुल, और या कहें स्पिरिचुअली पावरफुल, और लास्ट है इसेंसफुल। तो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट क्या है? हम बाबा के बच्चे, जैसे मैंने पहले बताया, हम बाबा की मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, और उसमें हमारे पास, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं या मेडिकल साइंटिस्ट हूं या जो भी हमारा प्रोफेशन है, और हमने शास्त्र भी पढ़े हुए होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं से बाबा की श्रीमत में कुछ ना कुछ शास्त्रों की बातें, कुछ ना कुछ साइंस की बातें ऐड करके एक बहुत ही बढ़िया क्या बना, चटपटा क्लास बना लेते हैं और हम सुनते सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सुनने सुनाने की विधि तो बच्चों की बहुत अच्छी है, किंतु फिर भी बच्चे जो है, बच्चों की याद अच्छी नहीं है। बड़े बड़े बाबा कहते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, क्लास कराने वाले हैं, बड़े बड़े जो बच्चे हैं, मुरली भी बहुत अच्छी सुनाते हैं, किंतु उनका योग नहीं लगता है। योग कब लगेगा? हमारी धारणा मजबूत कब होगी? जब तक हम सेंसिबल नहीं बने। स्पिरिचुअली सेंसिबल बनना, ज्ञान के आधार पर जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते हैं, बाबा ने एक बार बताया था कि बाबा ने कहा अंतिम रियलाइजेशन कोर्स रिवाइज और रियलाइज, जो बाबा के महावाक्य हैं उनको गहराई से हमें रिवाइज और रियलाइज करना है। पर उसके लिए हमें सबसे पहली जो बात है, अगर हमें सेंसिबल बनना है तो हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। बाह्यमुखी बच्चे भी ज्ञान को सुनते और सुना सकते हैं, क्लास करा सकते हैं, किंतु अंतर्मुखी बनने, अगर हम अंतर्मुखी सचमुच में हमें निश्चय नशा और निशाना एक्यूरेट करना है, अगर हमें स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी बनना है, बाबा के नैनों का नूर बनना है, मस्तक मणि बनना है, नूरे रतन बनना है, 108 की माला का दाना बनना है, तो हमें पहले पहले सबको एक पाठ पक्का करना होगा, वो है अंतर्मुखता का पाठ। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी अर्थात अंदर में जो मैं आत्मा हूं, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परमधाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों की महिंसार वाली याद से कंबाइन हो। अर्थात बाबा मेरा सर्व संबंधी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। जब इस याद से कंबाइंड होकर के बाबा से हम सोचें, निर्णय करें, कुछ भी सोचना है बाबा से कंबाइंड होकर सोचें, बाबा से कंबाइंड होकर कोई भी निर्णय करना है तो निर्णय करें, बाबा से कंबाइंड होकर देखें, बाबा से कंबाइंड होकर कुछ भी पढ़ना है बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ें, कुछ भी सुनना है तो बाबा से कंबाइंड होकर सुने, इवन श्वास लेना है, श्वास तो हम लेते ही हैं, इवन श्वास की प्रक्रिया पे भी बाबा की याद समाहित हो, बाबा से कंबाइंड होकर हम श्वास लें, बाबा से कंबाइंड होकर हम बोले, बाबा से कंबाइंड होकर हम पानी पिए या दूध पिए, जो भी हम पीने की चीज हम पीते हैं, बाबा से कंबाइंड होकर, ये मैंने अभ्यास करके मैं देखता हूं कि बाबा से कंबाइंड होकर के, बल्कि पहले हम जब भी पानी पीते हैं या दूध पीते हैं तो बाबा से कंबाइंड हो जाओ और उसमें वाइब्रेशन जाने दो। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लगभग आप उसमें ज्ञान सागर से कंबाइंड, पवित्रता के सागर से कंबाइंड, शांति के सागर से कंबाइंड, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर से कंबाइंड, अतीन्द्रिय सुख के सागर से कंबाइंड, आनंद के सागर से कंबाइंड, ऐसी अशक्तियों के सागर से कंबाइंड, उससे कंबाइंड होकर के, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, हमारे शरीर में कोई भी प्रक्रिया, कोई भी रिएक्शन बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो सातों एनर्जी अगर हमारे उस पानी में चली जाए, वो एक दवाई का काम करता है। इस पर काफी सारी रिसर्च भी हुई है, आपसे पहले भी कुछ लोगों भाई बहनों ने शेयर किया होगा। तो पानी जब हम पीते हैं बाबा की याद में पिए, दूध पिए तो बाबा की याद में पिए, और अगर हमें और कुछ खाना भी है तो बाबा की याद में, निरंतर बाबा की याद में भोजन ग्रहण करें। ऐसे ही हम किसी से व्यवहार करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बाबा से बाबा की याद में करें। अगर हम हाथों से पैरों से कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं या हाथों से कुछ काम कर रहे हैं, किससे व्यवहार में आ रहे हैं, तो निरंतर बाबा की याद में अगर कंबाइंड होकर करें तो हम इस रास्ते पर परफेक्शन से आगे बढ़ सकते हैं, हम विजयमाला के दाने बन सकते हैं, हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, बाह्य मुक्ता वाला व्यक्ति जो सारा दिन मोबाइल में टेलीविजन में बिजी रहते हैं, इधर उधर लोगों से बातचीत, व्हाट्सएप, क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर या चैटिंग में बिजी रहते हैं, अखबार में बिजी रहते हैं, ऐसे भाई बहनें इस मार्ग में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि राजधानी बन रही है, ऐसे तो सबका सबको जगह मिल ही जाएगी, कोई राजा रानी बनेगा, कोई दास दासी बनेंगे, कोई साहूकार बनेंगे, कोई प्रजा बनेगी, कोई और उनके भी दास दासी बनेंगे, स्थान सबको मिलेगा। तो अगर हमारा लक्ष्य है राजयोग माने राजा बनना, तो हमें ध्यान रखना कि हमें अंतर्मुखी बनना ही पड़ेगा। पहला कदम है अंतर्मुखी। अगर हम अंतर्मुखी बनते तो निश्चय के फाउंडेशन हमारा मजबूत होगा, तभी हम ज्ञान योग में परफेक्ट चल पाएंगे, तभी हम सच्चे ब्राह्मण बन पाएंगे। तो अंतर्मुखता, जितना जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, उतना उतना हमारा दिल, हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, वो सच्ची और साफ होती जाएगी। तो हमें उतना उतना महसूस होगा कि बाबा ही से मेरा सब कुछ है। आत्मा को प्राण कहते हैं, तो प्राणेश्वर सातो एनर्जी का सागर पावर हाउस बाबा ही है, उतना गहराई से मैं उसको महसूस कर पाऊंगा। तो निश्चय सबसे पहले जो उतना बाप में निश्चय पक्का होता जाएगा, क्योंकि आधा कल्प से हमने बाप को किस रूप में देखा, या तो श्री कृष्ण के रूप में देखा, श्री राम के रूप में देखा, हनुमान के रूप में देखा, गणेश के रूप में देखा, या किसी देवी के रूप में देखा। कि तो अभी बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया, और फिर बाप दादा दादी गुलजार जी के माध्यम से बाबा ने लगभग 48 वर्ष हमें पढ़ाया, फिर 33 वर्ष पढ़ाया, फिर 48 वर्ष बाबा ने दादी के माध्यम से, दादी के साकार तन के द्वारा हमको पढ़ाया। तो बाबा जिस रूप में आया, बाबा जो है जैसा है वो मुझे स्वीकार है। तो बाबा और मैं जो हूं जैसा है, जैसा हूं, बाबा मुझे स्वीकार करता है। बाबा ने मुझे कोटों में से कोई में से चुना है, मैं कोई में से कोई हूं। तो ये नशा, तो बाबा पे, बाबा कहते हैं बाबा पे तो सबको विश्वास है, बाबा पे सबको निश्चय है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय सबका है, अटूट निश्चय है। इसलिए तो हम ब्राह्मण बने, इसलिए तो बाबा घर में आते हैं, इसलिए तो हम अमृत वेले उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, इसलिए तो मुरली सुनते हैं। बाबा पे हम सबको बहुत बहुत, मतलब बाबा पर हमारा अटूट निश्चय है। कि तू प्रॉब्लम कहां आती है, और चारों ही निश्चय मजबूत होने बहुत जरूरी है, खाली बाबा पे निश्चय नहीं, स्वयं पे निश्चय भी उतना ही जरूरी है। अब स्वयं पे निश्चय क्या, क्योंकि हमारे साथ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस जन्म का सबकॉन्शियस माइंड और पिछले जन्मों का अनकॉन्शियस माइंड है। लगभग हमारे 62 जन्मों का सत्युग त्रेता में तो हमारा 100% कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन होता है, इसमें हमारे सपने नहीं आते हैं, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो जैसे द्वापर युग में हम आते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनना शुरू होता है, 22वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड, फिर 22वें जन्म में जब हम होते हैं तो जो पाप कर्म जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, उसके भी सपने आते हैं, उसकी वजह से नींद में खलल पड़ता है, और फिर 23वें जन्म में आते हैं तो 22वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके आधार पर हमको 23वां जन्म मिलता है, 23वें जन्म का फिर सबकॉन्शियस माइंड बनता है। ऐसे 63 जन्म में हम आ गए तो 62 जन्म का अनकॉन्शियस माइंड और 1 जन्म का सबकॉन्शियस, जन्म का सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हमसे गलतियां होती हैं, नियम मर्यादा के खिलाफ हम कुछ कर्म करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे रात की नींद को डिस्टर्ब करता है, उसमें स्वप्न आना और सब कुछ। और हमारा लक्ष्य क्या है, विक्रम विनाश करने का अर्थ क्या है, विक्रम विनाश करने का अर्थ है हमें 100% अपने सबकॉन्शियस माइंड को खत्म करना है, उसे कॉन्शियस बनाना है, और अनकॉन्शियस पिछले जन्मों के मन को भी, जो पाप कर्म किए हैं उसको भी खत्म करना है। तो 100% जब हमारा मन कॉन्शियस बन जाएगा तो हमारी 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी। उसमें हमारा लगभग 90% मन हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है। तो जितना अधिक हम बाबा की या अपने अपने को नशा, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा को स्वीकार है, बाबा जो है जैसा है मैं, बाबा ने, बाबा मुझे स्वीकार, मैं स्वीकार करता हूं। तो ये जब हमारे अंदर लक्ष्य आता है और बाबा को हम सरल संबंधों से अपना बनाते हैं, और बाबा के साथ जो बाबा की जो मुरली है ना, जितना अधिक उसका मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया कि निश्चय का आधार है नॉलेजफुल, नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप स्थिति। और जब इसके लिए, जैसे मैंने अभी हम बात करें अंतर्मुखता, जितना हम अंतर्मुखी होते हैं, जितनी हमारी दिल सच्ची दिल होती है, सच्ची दिल माना जिस दिल में बाबा के सिवा दूसरा कोई ना हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, दिल में किसी भी तरह का कोई भी देहधारी, कोई भी वस्तु दिल में ना हो, चेतना में मेरी ना हो, कॉन्शियसनेस में मेरी ना हो, ये दिल नहीं, ये तो फिजिकल दिल है, आत्मा का दिल, चेतना, बुद्धि है ना, बुद्धि का भी अंदर वाला आस्पेक्ट। तो दिल एकदम सच्ची हो और साफ दिल, अर्थात जिस दिल में मुरली के अलावा कुछ और ना हो, दिल में मुरलीधर और उसकी मुरली, बाबा परम सत्य है और उसकी मुरली भी परम सत्य है, जरा भी श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत का अंश ना हो। तो जितना अधिक हम इसका मनन चिंतन करते जाएंगे, जितना अधिक हम मन 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 ही मन में, जो दिल में होता है ना उसकी याद स्वतः ही आती है, वो याद करना नहीं पड़ता है। अगर आपके दिल में आपका बच्चा या दोतरा पोतरा, जैसे कल बाबा ने कहा, वो दिल में बैठे हैं तो क्या होता है, भले हम मुरली सुनते रहे, भले बार बार बच्चों की याद आएगी, धोतरे पोतरे की याद आएगी, कोई ना कोई हमें जो दिल में पैसा होगा पैसा की याद आएगी, बैंक बैलेंस होगा बैंक बैलेंस की याद आएगी, उन सबको निकाल के दिल में बाबा को बिठाना है। सेंसिबल का मतलब क्या है, इसमें मैं थोड़ा आता हूं, क्योंकि बाबा को चाहिए नॉलेजेबल, बाबा को चाहिए स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, बाबा कहता बुद्धिमान बच्चे नहीं चाहिए, बाबा को सेंसिबल बच्चे चाहिए, समझदार बच्चे चाहिए, बुद्धिमान नहीं, सेंसिबल बच्चे, समझदार बच्चे। लौकिक बुद्धिमान तो बिल्कुल नहीं चाहिए, स्पिरिचुअली बुद्धिमान तो अच्छे हैं, किंतु उनको भी सेंसिबल बनना पड़े। वो सेंसिबल क्या है, हम उस पर पहुंचते हैं, कैसे कैसे हम सेंसिबल बने, क्योंकि सेंसिबल बनने के बाद नशा चढ़ेगा, तभी हम पावरफुल बन सकते हैं। तो ज्ञान का जैसे हमने मनन, जब सच्ची दिल में बाबा को बिठा लेते हैं और बाबा की मुरली दिल में आती है, तो हमें हमेशा क्या होगा, बाबा की बातें बार बार याद आती है, जिससे बहुत दिल का प्यार होता है ना, वो चीज उसकी एक एक कही हुई बात याद आती है। जैसे आज की मुरली थी, बार बार दिल में, दिल से अंदर याद आएगी, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने हमको ये वरदान दिया, बाबा ने आज मुझे स्लोगन दिया, बाबा ने मुझे होमवर्क दिया, ये वाला बार 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 वही गूंजता रहेगा। जैसे किसी दिल में छोटा बच्चा बैठा होता है, तो बच्चे की बात सारा दिन ऑफिस में बैठे बैठे काम करते करते उसकी बातें याद आती है, आज मेरे को बच्चे ने ऐसा बोला था, मुझे ये लेके जाना है, मुझे ये लेके जाना है। तो ऐसे ही बाबा से जब दिल में बाबा है, तो बाबा की याद बार बार, बाबा की मुरली बार बार याद आएगी। और जब दिल में उसको बार बार रिवाइज करते ना, मन ही मन में रिवाइज करना, जब मन ही मन में बाबा की मुरली चलती रहेगी, बाबा ने ये कहा, जैसे आज की मुरली में था बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, तो हमें जो इतना ये, हम जैसे पावन बनने की पढ़ाई में, सब पढ़ाई में सहज है कि मुझे पावन बनने की पढ़ाई है, मुझे पावन बनना है, मुझे पावन बनना है, तो पावन की गहराई में हम जाएंगे, तो फिर क्या सच्ची दिल की लगन से फिर लगन लग जाएगी, पावन मुझे कैसे बनना है, ये पढ़ाई से पावन कैसे बनेंगे, वो लगन से, सच्ची दिल की लगन से फिर उसका हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन के बाद चिंतन होता है। चिंतन में क्या करेंगे, हम इसकी गहराई में जाएंगे। जैसे हम ज्ञान सार रूप में क्या है, ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, हम ए और बी की गहराई में जाएंगे, ए और बी की गुह्यता में जाएंगे। आत्मा कैसे शरीर को चला रही है, कैसे छोटी सी आत्मा, कैसे सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, मन क्या है, मन के मध्यम, मन का मतलब क्या है, मन के चार एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, ये चार मन के एस्पेक्ट हैं। तो मन कैसे, आत्मा मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, वृत्ति और दृष्टि के माध्यम से, और स्मृतियों के माध्यम से कैसे शरीर के एक एक सेल को नरिश कर रही है, कैसे पोषण कर रही है, ज्ञान से, पवित्रता से, शांति से, प्रेम से, अतीन्द्रिय सुख से, आनंद से, और आठों शक्तियों से नरिश करती है। और अगर मेरी टीम कहीं नेगेटिव हो जाती है, कहीं ना कहीं विचार भावनाएं नेगेटिव हो जाती हैं, मेरी वृत्ति खराब हो जाती है, दैहिक वृत्ति हो जाती है, किसी लगाव झुकाव प्रभाव टकराव की वृत्ति हो जाती है, स्मृति में कुछ पुरानी बातें, आसुरी बातें आने लगती हैं, स्मृतियां या विस्मृति होने लगती है अपने ब्राह्मण जीवन की, तो ये एनर्जी ब्लॉक होती है, और ब्लॉक होती है तो मेरे शरीर में बीमारियां, मन की बीमारियां या शरीर की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो ये देखना कि मेरे को अगर हार्ट की प्रॉब्लम, मेरे को अगर डायबिटीज है, मेरे को अगर मेरी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कौन सी एनर्जी मेरी कम जा रही है, और कहां मेरे, क्या मेरी स्मृति में क्या खराबी है, गुह्यता में जाओ, तब एक्चुअली तब क्या होगा, तब हमारा फाउंडेशन, जब हमारा, तब हमारा निश्चय बाप पर और स्वयं पर पक्का होगा। फिर बाप की गुह्यता में जाओ, बाबा कैसे ऊपर बैठा है, कैसे सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं को चला रहा है, प्रकृति के पांचों तत्वों को चला रहा है, कैसे सबको नियंत्रित कर रहा है, विश्व नियंता है वो, तो उसकी गहराई में जाओ। ऐसी जो दिल में बाबा को बैठा लिया ना, तो बाबा की मुरली कैसे आएगा, पावन कैसे बनना है, पावन का मतलब क्या है, पतित का मतलब क्या है, इसकी गहराई में जाओ। मैं कितना, मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं दिखाई देंगी, इसको बोलते रियलाइजेशन। सच्चे दिल से महसूस करो, आत्मा मुझ आत्मा की स्थिति क्या है, परमात्मा परमात्मा कैसे बाबा अभी आया ब्रह्मा के तन में, और कैसे अब सूक्ष्म तन में बैठ के बाबा कैसे मुझको निहार रहा है, कैसे मुझको देख रहा है, कैसे मेरी एक एक, एक, एक हम, बाबा जैसे विश्वरत्न दादा बताते थे, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे साथ है, हर समय बाबा मुझे देख रहा है। तो ये अगर मेरे अंदर लगन लग जाए, और बाबा की बात को, आज की मुरली के महावाक्यों को मैं बार बार रिवाइज करूं, रियलाइज करूं, मनन करूं, चिंतन सच्ची दिल की गहराई से मैं उसको चिंतन करूं, मतलब उसको जो मैंने कहा उसकी गुह्यता में जाएं, गहराई में जाएं, ए और बी की गहराई में जाएं, आत्मा परमात्मा गहराई में जाएं, और सी की, जो सी माना कनेक्शन, बाबा से करंट कैसे खींचें, इसके रहस्य में जाएं। अब करंट कैसे खींचेंगे, करंट संबंध के आधार पर करंट खींच सकते हैं। अगर मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं तभी मैं करंट खींच सकता हूं, वैसे हम करंट खींच नहीं सकते हैं। तो मुझे अपने लौकिक संबंधों से बुद्धि निकाल करके मुझे अपने दिल में बाबा को बिठा करके, और बाबा से सर्व, वही मेरा माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरा शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सज्जन और बच्चा, मुख्य नौ संबंध, ये सारे संबंध मुझे लौकिक से ना रियलाइज करते हुए बाबा से महसूस करने हैं। जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, उस संबंध से मुझे बाबा को यूज करना। फिर निश्चय पक्का करने का तरीका यही है, क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन क्या है, निश्चय, ज्ञानी स्थिति, ज्ञान स्वरूप बनना। एक होता है ज्ञानी, सुनना सुनाना, वो तो आधा क्लब से किया है, कि तो सचमुच में ज्ञान स्वरूप बन जाऊं, चलते फिरते उठते बैठते मुझे आत्ममानी स्थिति मेरी बन जाए, तो देही, इसको हम देही मानी स्थिति भी कहते हैं, जो मैं बात कर रहा हूं अभी, मनन चिंतन मंथन, जितना हम गहराई से उसका मनन चिंतन, तो उसकी उस गहराई में चले जाए। फिर उसके बाद है डी, डी की हम राज में चले जाए, कि मेरे शरीर में या मेरे मन में या मेरे परिवार में या मैं जो भी कार्य करता हूं वहां पर मेरे ऊंच नीच क्यों होती है, कोई व्यक्ति मुझे क्यों ऐसे व्यवहार करते हैं, मैं गलत नहीं किया कि तो वो व्यक्ति मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, मेरी इंसल्ट या मुझे अब्यूज क्यों किया उसने, या मेरे साथ ये तकलीफ क्यों होता है, मेरे सामने पेपर बार बार क्यों आते हैं। तो जब इसको रियलाइज करें, सच्चे दिल से महसूस, चिंतन करना मैं महसूस करना, तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के पुराना स्वभाव संस्कार, जो आसुरी स्वभाव संस्कार है, पुराना आसुरी स्वभाव क्या है हमारा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और आसुरी संस्कार क्या है, इसके द्वारा जो आसुरी संस्कार बनते हैं, आलस्य सबसे बड़ा विकार, मतलब जो संस्कार, जो आसुरी संस्कार है, वो जो ब्राह्मणों को तंग करता है, वो आलस्य है। दूसरा अलबेलापन है, जो अभी कल बाबा ने कहा ना, कमजोरी, आलस्य, अलबेलापन, ये तीन नींद, अज्ञान की नींद है, जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को तंग करती है। तो आलस्य, अलबेलापन, ये आदत बन गई है ब्राह्मणों की, क्योंकि अगर हमारे अंदर सूक्ष्म थोड़ा भी अंश है ना, अब हमने हमारे अंदर ब्राह्मणों में किस रूप में है, माया किस रूप में है, रावण किस रूप में है, देवीमान किस रूप में है, आलस्य, अलबेलापन के रूप में, दोष दर्शन के रूप में है, दूसरों के अवगुण तुरंत दिखाई देते हैं, बदला लेने की भावना के रूप में है, संशय के रूप में है, निश्चय नहीं संशय के रूप में है, कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ये इस लायक नहीं है, अनुमान के रूप में है, निश्चय और विश्वास के रूप में नहीं है, चिंता और भय के रूप में है, और जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, और ईर्ष्या द्वेष के रूप में, ये संस्कार बचे हुए हैं, ये आसुरी संस्कार हैं। तो जितना हम गहराई से ड्रामा के इसके इसकी गुह्यता में जाते हैं, राज के रूप में, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, कहते हैं ना किसी से 10 रुपया, ड्रामा का राज क्या है, किसी से 10 रुपया अगर आपने उधार लिया, तो 100 साल के बाद अगर वो व्यक्ति मेरा फ्रेंड था, उसे 10 रुपया हमने उधार लिया 100 साल पहले, वो व्यक्ति, वो मेरा मित्र, इस जन्म में मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, 10 रुपया तो उसको वापस लेना है ना मुझसे, या तो मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा, या तो मेरा दोस्त बनेगा, या तो मेरा घर में कोई मेरा पति या पत्नी बनेगा, या मेरा बच्चा बनेगा या बच्ची बनेगी, और मुझे 10 रुपये उसको वापस करना है, और 10 रुपये का ब्याज, हिसाब किताब क्या है, वो 10 रुपये तो हिसाब है, किताब क्या है, उसका ब्याज है 100 साल का 4,18,35,040 रुपये, इतना हिसाब है, इतना किताब है, और यही हमारा, ये हमको चुकतू करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर मैं किसी को एक बार धोखा दिया पिछले जन्म में, इस जन्म में मुझे कम से कम 1,000 बार उसे धोखा खाना पड़ेगा, हम धोखा वहीं रहेंगे और खाना भी रोज खाना, रोज धोखा भी खाते रहेंगे, और रहेंगे भी वहीं, रहना भी वहीं पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकते। किसी के एक बार हमने इंसल्ट की, इस जन्म में कम से कम हमें 1,000 बार हमारी इंसल्ट होगी, 100 साल पहले किसी को ताले बजाने की बात है, किसी में किसी के हमने किसी के एक बार किसी को गाली दी, ग्लानी की, हमारी 1,000 बार ग्लानी होगी। तो ये हमें क्या राज है, इसका भी चिंतन करने की आवश्यकता है, निश्चयता हमारा बैठेगा। हम अंदर से जब अंदर से रियलाइज कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, हाँ ये जो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता है, ये व्यक्ति फला व्यक्ति करता है, करती है, क्यों करता है, मेरा बॉस हो सकता है, मेरे साथी हो सकता है, मेरे नीचे काम करने वाला हो सकता है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं? सच्चे दिल से उसको महसूस करना, रियलाइज करने में क्या फायदा होता है? जब मुझे पता है मेरी मंजिल वो है, मेरा निशाना वहां है, तो रास्ते में कौन कौन सी रुकावट है वो मुझे दिखाई देती है, महसूस होती है। ये रुकावट हटेगी तो मैं वहां तक पहुंचूंगा, रुकावट कैसे हटनी ये भी बुद्धि में आएगा। तो ये रिवाइज और रियलाइज करने का फायदा है। तो ये जब हम करते हैं तो हमारे जब रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज मेरी है, ये चीज मेरे अंदर कमजोरी है, इसको मैं, इसकी बात मुझे फील होती है, मुझे कैसे कंबाइंड होकर, मुझे बाबा से कंबाइंड होकर, अंतर्मुखी होकर मुझे इस बात को फेस, जब भी मुझे मिले उसकी बात को मुझे कंबाइंड होकर फेस करना है, सहन करके समाना है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आती है। तो इस तरह से करते करते हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर शक्ति आती जाती है। शक्ति का मतलब क्या है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारे अंदर निश्चय के साथ साथ बाबा पे निश्चय बढ़ता है और हमारे अंदर स्वयं पे निश्चय आने लगता है कि ये जो बाबा जो है मेरे साथ है, सर्व संबंध से मेरे साथ है, और गुह्यता रहस्य और राज, रहस्य सीक्रेट, मुझे बाबा से करंट खींचने, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से मैं करंट खींच सकता हूं, और उसमें धैर्यता चाहिए, उसमें गंभीरता चाहिए करंट खींचने के लिए, और सहनशीलता चाहिए, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, 63 जन्मों के पाप कर्म है, तो करंट खींचने बीच में वो रास्ते बाधा बनते हैं, तो धैर्यता चाहिए। और सीरियस होके मुझे योग करना है, सीरियस होके मतलब गंभीर होकर के, बहुत अटेंशन से, सारे काम छोड़ के भी वो करना है, अटेंशन रखनी है, हॉस्पिटल पेशेंट देखते हुए मुझे बाबा की याद में रहकर कर्म करना है, ताकि मेरे काम में एक्यूरेसी आए, मुझे व्यर्थ चिंतन ना चले, नेगेटिव चिंतन ना चले, एक्यूरेट जो चीज होनी है वो चीज एक्यूरेट टच हो जाए, और मुझे सहनशीलता, काफी जगह मुझे ऐसा सुनना पड़ेगा जो मैंने कर्म किए हैं, किसी का गलत किया है, गलत बोला हुआ है, मुझे वो सुनते हुए समाते हुए अपने कार्य में तत्पर रहना, बाबा की याद में रहते हुए कार्य करना, कर्म योगी बनकर कर्म करना पड़ेगा। और इस तरह से जब हम करते हैं तो ये हमारे अंदर क्या होता है, हमें चिंतन के बाद दिल में बुद्धि मन और तन चारों में बाबा बस जाता है, बाबा की करंट बस जाती है, और तब मंथन होता है। मंथन में भी वही धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता चाहिए, बहुत ठंडे दिल से, बहुत ठंडे से, शांति से हमें जब मंथन करते हैं, कार्यक्रम करते करते करते, तो हमारे अंदर हमें ज्ञान सचमुच फील होता है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा सर्व संबंधों से मेरे साथ कंबाइंड है, और ड्रामा में मैं साक्षी दृष्टा बनने लगता हूं। तो ABCD प्रैक्टिकल स्वरूप, ज्ञान स्वरूप स्थिति, अंदर से जैसे मक्खन निकलता है, दही में से मक्खन निकलता है ना, मक्खन दिखाई नहीं देता दूध में, किंतु दिखाई देने लगता है मंथन करने से, पर उसमें चारों चीज की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, दिल बुद्धि मन और तन, चारों में रोम रोम में वो चीज समा जाए तब मंथन होता है। तो मंथन होता है तो हमारे अंदर ज्ञान स्वरूप स्थिति, पवित्र स्वरूप, तो पवित्रता रियल में मक्खन के रूप में दिखाई देती है, पवित्रता क्या होती है, न्यारा प्यारापन फील होता है, सबके प्रति ये मुझे भाव आता है, वो आत्मिक भाव पैदा होता है, मेरी आत्मिक वृत्ति बनती है, आत्मिक वृत्ति आत्मिक दृष्टि बनती है, मेरे अंदर शांति पास को फुल स्टॉप लग जाता है, शांति रियल में फील होने लगती है, मतलब संकल्पों की ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाती है, और कोई भी कैसा भी कर्म कर रहा है मेरे साथ, उसमें साक्षी दृष्टा भाव के साथ साथ एक्सेप्टेंस आती है, उसमें मुझे सबको बराबर पालना करनी है, सबके बराबर, चाहे मेरी ग्लानी कर रहा है या मेरी महिमा कर रहा है, दोनों बराबर है, दोनों की बराबर पालना करना। तो सत्य सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम अंदर महसूस होता है, अतीन्द्रिय सुख महसूस होने लगता है, बाबा के साथ सच में मिलन का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब आनंद की अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होने लगती है ना, अतीन्द्रिय सुख माना क्या, पाना था सो पाले, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, संतुष्टता, स्वयं से भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट, ड्रामा से भी संतुष्ट और परिवार से भी संतुष्ट आने लगती है, और तब हमें इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति आने लगती है, तब हम लवलीन स्थिति का अनुभव करते हैं, एक रोमांचित स्थिति का ऐसे आनंद कहते हैं, आनंद माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, आत्मा परमात्मा के प्यार का अनुभव करती है, और जब ऐसी स्थिति हमारी बनती है तो फिर हमारे अंदर हमें हमारी परम सत्य को परखने की शक्ति पैदा होती है, जिसे विजडम कहते, थर्ड आई विजडम कहते हैं, तीसरी आंख, तब पहली शक्ति जो है ना वो परम सत्य को परखने की शक्ति है, उसे विजडम कहते हैं। तो ये हमें सेंसिबल बना देती है, हमारी मन बुद्धि सब चीज से हट जाती है, परम सत्य को परख लिया, बस मैंने बाबा बाबा को बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा संसार है, जब ये हमारी स्थिति बनती है तब हम यथार्थ निर्णय करने की शक्ति पैदा होती है, या यूं कहें दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, और जब दिव्य बुद्धि यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आती है तब हमारे अंदर चार मर्यादाएं, ब्राह्मण जी में चार मर्यादाएं, पक्की हो जाती। तो निश्चय तो बाप पे निश्चय, परिवार पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय, और जब स्वयं पे निश्चय आता है तो ड्रामा पे निश्चय आने लगता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ये व्यक्ति मेरे को गलत कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ मेरे को अपमान कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे को धोखा दे रहा है, मैंने दिया हुआ इसलिए मुझे दे रहा है, मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ड्रामा कल्याणकारी है क्योंकि ड्रामा सफलता भी दिलाता है, समस्या भी लाता है। और ड्रामा पे विजय क्या है, ड्रामा में निश्चय क्या है कि मुझको ड्रामा पे निश्चय है तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेता हूं, यह है विजय। निश्चय बुद्धि विजयंती कहते ना, तो ड्रामा पे जो मुझे परिवर्तन आया, मेरे शरीर तन में परिवर्तन आया, मन में परिवर्तन आया, धन में परिवर्तन आया, संबंध संपर्क में परिवर्तन आया, मेरे सेवा में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेना, यह है ड्रामा पे विजय। तब ड्रामा पे निश्चय बनता है और तब मेरी ड्रामा में निश्चय की स्थिति आती है। वो आएगी जितना हम मनन चिंतन मंथन करेंगे, दिल सच्ची साफ चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए, दिल सच्ची साफ चाहिए, तब वो मंथन होगा, मनन चिंतन मंथन होगा। और सिमरन क्या होता है, जो मक्खन निकला फिर कार्य करते हुए उस कार्य को, उस मक्खन को यूज करते जाओ, पवित्रता को कार्य में लगाओ, शांति को कार्य, उस शांति से कार्य करो, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम से कार्य करो, अतिंद्रिय सुख में रहकर कार्य करो, आनंद में रहकर कार्य करो, अशक्तियों को यूज करते हुए कार्य करो, तब आठों शक्तियां एक्चुअली बाबा को जब परख लेते हैं, बाबा को अपना बना लेते हैं, तब हमारे अंदर सत्य को परखने की शक्ति आई, तब पवित्रता दृढ़ता से आती है, संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सपन तक भी पवित्रता। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे तुम्हारी रूहानियत का प्रत्यक्ष होगी जब तुम्हारे सोपन भी पवित्र हो जाएंगे, जब तुम्हारे सोपन में पवित्रता होगी। और सोपन में पवित्रता कब होगी, जब तुम्हारी योग निद्रा होगी, योग निद्रा अर्थात जब बाबा को हम याद करके लेटर लिखेंगे, बाबा को अपनी पूरा पोता में सच्चा सच्चा पोता मेल देंगे, और जैसे बाबा ने 3-4 दिन पहले कहा, आधा घंटा बाबा को याद करके फिर सोना है। जब बाबा की याद में सोएंगे ना आधा घंटा याद करके, तो हमारी योग निद्रा होगी, तब हमारे सोपन भी पवित्र हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति हमारी आएगी तब हमारे अंदर से क्या होगा, तब हमारी जो है जो प्रैक्टिकली हमारे अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी उस पवित्रता की, उस जब कर्म करेंगे ना पवित्रता के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, अतिंद्रिय सुख के साथ, आनंद के साथ, शक्तियों को यूज करते हुए, सत्य को प्रकट शक्ति, बाबा को प्रथम स्थान दे करके, सही निर्णय करके, पवित्रता का, शुद्ध सात्विक भोजन का, जो कल बाबा ने बताया, शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक भोजन सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, बाबा की याद में बनाए, बाबा की याद में खाएं, सत्संग बाबा और मुरली का संग सिर्फ, और कुछ भी संग नहीं, जागरण हमेशा जागृति रहे कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है, और चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो तब क्या होगा, जब ये स्थिति आने लगती है तो ये सेंसिबल बुद्धि जब बनते हैं ना, तो पावर आने लगती है, पावरफुल। जैसे जैसे पावर आने लगती है ना, पावर माना क्या, सत्य को पहली शक्ति आई, सत्य को प्रकटने की शक्ति, फिर आ गई यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, उसके साथ साथ चार ये आ गए, कौन कौन, चार पिलर्स आ गए, चार मर्यादाएं, कौन कौन सी मर्यादाएं आ गई, पहली मर्यादा कौन सी आ गई, पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता की। तो पवित्रता हमारा क्या है, बाबा ने परसों बताया ना, यही हमारी प्राप्ति है, प्रॉपर्टी है, यही हमारी रॉयल्टी है, और यही हमारी पर्सनैलिटी भी है ब्राह्मण जीवन की। तो जितना ये आती है उतना हमारा शुद्ध सात्विक भोजन, कभी भी लालच ना आए ये खा लूं, नहीं, बाबा अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से खा लो, नहीं तो फल ही खा लो, और कुछ नहीं मिले तो फल ही खा लो, 3-4 केले खा लो, पेट भर जाता है ना? मैं तो बहुत बार ऐसे किया है ना, कई दिन ऐसा किया, सिर्फ केले और दूध पे रहे है ना, और भोजन नहीं मिला तो, और सचमुच में स्थिति अच्छी रहती है फिर उससे। और फिर सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा और टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, ये सब जितना हो सके बचें, हम उनको यूज करें, वो हमें यूज ना करें। और चौथा फिर तब दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, ये 36 दैवी गुण हमारे निधि आने लगते हैं, तब हमारा अमृत वाला पावरफुल होने लगता है, तब हमारी मुरली अंदर जाने लगती है, तब हमारे अंदर सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन चलने लगता है, तब सोने के सच्चा समाचार बाबा को दे सकते हैं, तब हमारा मन और बुद्धि सूक्ष्म होने लगता है, मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि दिव्य हो गई, मन सूक्ष्म होने लगता है, संस्कार ये हमारे मर्यादाएं और नहीं, हमारे संस्कार बनने लगते हैं, और हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार होने लगता है, तब हमारे विस्तार को सार मिलाने की शक्तियां लगती है, हम सार रूपी गोद में बाबा की गोद में समा जाते हैं, और जब बाबा की गोद में समाने लगते हैं तो वहां से हम बाबा के साथ अनुभव करते हैं, रियल में बाबा की गोद, बाप दादा की गोद, ज्ञान सागर की गोद, पवित्रता के सागर की गोद, शांति के सागर की गोद, सत्यम निस्वार्थ प्रेम के, रियल में शांति क्या होती है, पवित्र सच्चा प्यार क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, पूरी उस रियल में उस सागर में समाने की अनुभूति करना, वो प्रैक्टिकल में हम महसूस करते हैं, एक शक्ति को वहां बाबा की गोद में महसूस करते हैं, बाप का संबंध, माँ का संबंध, टीचर का संबंध, सुदर्शन चक्र वहां बैठ के बाबा की गोद में बैठ के घुमाते हैं, सतगुरु के रूप में साकारी आकार निराकारी ड्रिल करते हैं, बंधु के रूप में सारा बोझ बाबा को दे देते हैं, सखा के रूप में अपने दिल की हर बात बाबा को सुना देते हैं, साजन के रूप में बाबा हमको दैवी गुणों से सजा देता है, सज्जन के रूप में बाबा हमारी सारी कमियां निकाल देता है, और फिर बच्चा माना जब हम हमारी स्थिति अच्छी होती है तो हम उस स्थिति को बाबा को समर्पित कर देते हैं, बलिहार जाते हैं, तो बाबा हमारा बच्चा बन जाता और बाबा हमको अपना बच्चा बना लेता। तो इस तरह से जब हम करते हैं आठों नौ के नौ संबंध की बाबा के सूक्ष्म वतन में अनुभूति करते हैं तो वहां से फिर हम समेटने की शक्ति यूज करते हैं, वहां से अशरीरी बनकर के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होते हमारे विक्रम विनाश होने लगते, और विक्रम विनाश होते तो हमारे अंदर ऐसी करंट आती है कि हमारे जो भी तन के मन के धन के संबंध संपर्क के जो भी पापक्रम हमने किए हुए हैं वो हमें बहुत हल्के, हम उसको सहन कर सकते हैं, समा सकते हैं, सामना कर सकते हैं, और जो हमें तंग करते हैं उनको हम सहयोग भी कर सकते हैं। तो आठों शक्तियां हमारे अंदर आती है ना, जब आठों शक्तियां आती हैं तो आठ शक्तियां आने से हमारे अंदर हम पावरफुल बन जाते हैं, और तब नशा चढ़ता है। नशा क्या चढ़ता है? तब रूहानी नशा, तब अपने मैं आत्मा हूं परमात्मा से कंबाइंड हूं, यह नशा चढ़ता है, आत्मिक स्वरूप का नशा चढ़ता है। जो कहते हैं निश्चय की फलक होती है, गीत में था फलक और झलक, और नशे की फलक होती है, चेहरे में फलक होती है कि मैं आत्मिक स्वरूप परमात्मा से कंबाइंड हूं, यह फलक चेहरे से दिखाई देगी। अपने ब्राह्मण स्वरूप की फलक है ना, ब्राह्मण स्वरूप की वर्तमान अलौकिक जीवन की फलक, कैसा मेरा अलौकिक जीवन है मेरा, फरिश्ते स्वरूप की झलक है ना, झलक माना नशा, रूहानी नशा दिखाई देगा, और मेरे भविष्य स्वरूप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्म, वो प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा बाबा का दिखाई देता था, जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन, जैसे ब्रह्मा के चेहरे से सबको क्या दिखाई देता था, फरिश्ता और श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता था, साक्षात्कार दिखाई दे बाबा बच्चों को होता था, पहली बार अज्ञानियों को भी साक्षात्कार हो जाता था। तो ऐसी स्थिति हमारी बनती जाएगी। तो नशा माना पावरफुल, राइट, नशा माना पावरफुल। जब अशक्तियां संपन्न बन जाते हैं तो पावरफुल बनते हैं। देखो देवताओं का जब महिमा करते ना, देवताओं की महिमा में क्या आता है, सर्वशक्ति संपन्न आता है या सर्वगुण संपन्न आता है, क्या आता है बताओ, सर्वशक्ति संपन्न नहीं आता, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। तो जैसे जैसे हमारे अंदर आठ शक्तियां आती है ना, तो हमारा क्या होता है, चित्त हमारा शांत हो जाता है, दिल सत्य, दिल सच्ची और साफ तो चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है, और जैसा चित्त वैसा चिंतन, चित्त मेरा शांत एकाग्र आनंदमय है तो मेरी फाइलें कौन सी खुल जाती है, आनंद स्वरूप की फाइलें खुल जाती है, शांति की फाइलें खुल जाती है, और तब मेरी अंदर मुरली का मनन चिंतन ऑटोमेटिक करने लग जाता है, ऑटोमेटिक। तो कहते हैं सारा दिन मुरली का मनन चिंतन चले, श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली अंदर चलती रहे, तब सारा दिन मुरली का मनन चिंतन चलता है। और जो ऐसा अंतर्मुखी मनन चिंतन सारा दिन करता है उसको हमेशा अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव होता रहता है। तो हमारा निशाना क्या है, हमारा निशाना है निराकार स्थिति का, ब्रह्मा बाप समान निराकार स्थिति का, निर्विकार स्थिति का और निरंकार स्थिति का। वो तभी हो सकता है, निशाना हमारा तभी हो सकता है, फिर मुझे ऑटोमेटिक अपनी निराकारी स्थिति निर्विकारी, जब अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति साधन होती रहेगी ना, चलते फिरते हर कर्म करते हुए, कहते ना लास्ट में जब पिछाड़ी में होगी अतिंद्रिय सुख पूछना तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी किसे कहते हैं, एक वर्कशॉप हुई थी हमारी मधुबन में पांडवन में, उसमें पता लगा था गोप गोपी माना गोपी वल्लभ की गोप गोपी माना गोपी वल्लभ के प्यार में खोई रहने वाले गुप्त योगी, गोप गोपी माना गुप्त योगी, जो सारा दिन अंदर बाबा से कंबाइंड उसी में खोए रहते हैं, समाये रहते हैं बाबा की याद में, उनको पता नहीं लगता कि हम कहां जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना गोप गोपियां क्या थी, दीवानी हो जाती थी, भागती थी, उनको पता नहीं था हम कहां पर हैं। ऐसी स्थिति वाली गोप गोपियां, तो फिर निशाना सामने दिखाई देता है ना, सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति, अपनी अव्यक्त अव्यक्त फरिश्ता स्थिति और अपनी निराकारी स्थिति सामने दिखाई देती है। और फिर हमारे अंदर दैवी गुण सत्यता, जो 36 दैवी गुण है ना, वो हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं, आपने देखा हो एक कलर प्रिंटर होता है ना, कलर इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें चार इंक होती है, चार उसमें टैंक होते हैं, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड, एक येलो और एक ब्लैक। और इसका एक स्टाइलस होता है, चार ही रंग हुए और स्टाइलस होता है, बहुत बारीक होता है। और उसमें अगर हम कमांड देते हैं, उससे 50 कलर वाली एक फोटो बन जाती है चार कलर से। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा से निरंतर सब संबंधों के महिंसार वाली याद से कंबाइंड रह करके अशरीरी आत्मा बनके परमधाम में अशरीर भाव से कंबाइंड रहते हैं और अशरीर स्थिति में रहकर काम करना सीख जाते हैं, यहीं पर अपना सूक्ष्म वतन वासी, यहीं पर सूक्ष्म वतन को इसी दुनिया में ले आते हैं और परमधाम को भी इसी दुनिया में ले आते हैं, निराकारी से साकारी स्थिति बन जाती है, तो हमारे 36 गुण हमारे कर्मों से दिखाई देते हैं। जब आत्मा परमात्मा सागर से कंबाइंड होकर कर्म करती है, जब नदी सागर में कंबाइंड होकर वो भी सागर बन जाती है, तो वो सागर समान स्थिति हमारे 36 गुणों को प्रत्यक्ष कर्मों में दिखाई देंगे। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, मैं कुछ नाम बताता हूं, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एकनामी, वैत्स इकोनॉमी, एकमत, एक रस, सरलता, नम्रता, दया, रहम, करुणा। ये गुण अच्छे संगम युग के हैं, सत्युग में गुण नहीं चाहिए, ये यहाँ के गुण हैं, यहाँ प्रैक्टिस में लाने पड़ते हैं। उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, शीतलता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, सौमान्य का सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण और निर्मल स्वभाव, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, ये 36 दैवी गुण हमारे कर्मों में दिखाई देने लगते हैं। और प्रैक्टिस करते करते इसमें हम हर गुण में 100% 16 कला अर्थात 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हमारे अंदर चिंता भय भी खत्म हो जाती है, जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो जाती है, आलस्य अलबेलापन भी खत्म हो जाता है, शक अनुमान भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये नशे के बाद निशाना सामने दिखाई देता है। और जो हमारा मस्तक ऐसा बन जाता है कि हमारे चेहरे से क्या दिखाई देने लगता है, हमारा चेहरा, हमारा मस्तक और हमारे नैन से, हमारे चेहरे और चलन से, चलन ना कर्म, चेहरा माना मन, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो हमारा मन, हमारी टीम, हमारे विचार, मुरली का ही मनन चिंतन चलता रहता है, मुरली का चिंतन चलेगा तो मुरली के ही महावाक्यों का हम गहराई से उसके विचार चलते रहते हैं गहराई से ना, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, कोई विचार को बार बार करते हैं तो गहराई से तो भावना बन जाता है, भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, वो उस बाबा को, उस प्यार से बाबा के महावाक्यों को हम याद करते हैं तो वाइब्रेशन बाबा तक वो वाइब्रेशन जाते हैं और बाबा उसको हजार गुना पदम गुना उसको बाबा हमें याद करता है, क्योंकि दिल की याद दिल को दिल तक पहुंचती है तो बाबा के वाइब्रेशन मेरे ऊपर आते हैं, ऊपर छत्र छाया बन जाती, कैचिंग पावर, टचिंग पावर बढ़ जाती है, मैं उसी भावनाओं में रहता हूं तो मेरी वृत्ति रूहानी वृत्ति बनती है, रूहानी दृष्टि बनती है, रूहानी वायुमंडल बन जाता है, आभा मंडल जिसे कहते हैं, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, जितना आप निरंतर याद में रहेंगे, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा बढ़ती जाती है, उतना अधिक हमारा आभा मंडल बढ़ता जाता है और उसमें शांति, प्यार, खुशी के वायुमंडल, जैसे बाबा दादी जब आती थी स्टेज पर, दादी, बड़ी दादी जी, जानकी दादी, गुजरात दादी, बाबा दादा का जब पद्रामणी होती थी, सारा हॉल कैसा होता था, कैसा वायुमंडल बन जाता था, अवेक्ट वायुमंडल, शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशन सारे वायुमंडल में फैलते थे। इसी तरह से हमारे अंदर से जब हमारी स्थिति बनेगी ऐसी, तो बाप समान हमारी स्थिति बनेगी, तो हमारे मस्तक से, हमारे वायुमंडल से बाबा अपने आप प्रत्यक्ष होगा, हमारे कर्मों से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो इस तरह से निश्चय स्वयं, बाप में निश्चय तो स्वयं में निश्चय पक्का होता जाएगा, ड्रामा में निश्चय पक्का होगा, तो परिवार में निश्चय पक्का, परिवार माना ये जो परिवार हमें मिला है, ये हमारा परिवार बहुत ही बहुमूल्य परिवार है। क्यों परिवार है, क्योंकि पिछले जन्मों के हिसाब किताब इस परिवार के साथ है। जो लौकिक परिवार आपको कौन सा मिला है, ये परिवार कल्याणकारी परिवार है, लौकिक परिवार भी कल्याणकारी है, अलौकिक परिवार भी कल्याणकारी है। सत्युग में हमारे संस्कार मिलन की दास कैसे होगी, जो भी 63 जन्म में हमने कुछ ऊंचा नीचा किया एक दूसरे के साथ, वो यहां पर सहन करके समाना है, और इसी को तभी संभालेंगे, सहन करके समाएंगे, तभी हम भविष्य में उस परिवार के भाती बनेंगे। क्योंकि परिवार में निश्चय बहुत बहुत आवश्यक है। उसी में हमारे क्या होता है, ऊंच नीच होती है, उसी में हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो इसलिए बाबा से कंबाइंड होंगे, ड्रामा पे निश्चय होगा तो परिवार पे निश्चय अपने आप हो जाएगा, और जब परिवार पे निश्चय हो जाएगा तो नशा पावरफुल हो जाएंगे, सेंसिबल बनेंगे। बाबा को बाबा से इतना कंबाइंड रहेंगे तो सेंसिबल बनेंगे, सेंसिबल बनेंगे तो पावरफुल बनेंगे, आठों शक्तियां आएंगी तो नशा आ जाएगा। चारों बातों का नशा, आत्मिक स्वरूप का नशा, अलौकिक जीवन का नशा, फरिश्ते जीवन का नशा और भविष्य स्वरूप का नशा। और जब ये होगा तो हमारे अंदर गुण आएंगे, तो गुण आएंगे तो निशाना, तब हमें दिखाई देगा अपना भविष्य फरिश्ता स्वरूप, या यूं कहें निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्वरूप, और हमारा भविष्य देवता स्वरूप। ओम शांति। चलिए हम दो मिनट बाबा को याद करते हैं। Yeah.